आर्यांश दीवा को आज शाम की डिनर डेट के लिए इनवाइट करने आया था। हॉस्पिटल में वो दीवा को पेशेंट बनकर आया और उसे जी भरकर तंग किया। दीवा के पास ना जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। आर्यांश के जाते ही दीवा ने राहत की सांस ली और वापस अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम तक काम करने के बाद दीवा घर लौटने की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले उसे अपने पेशेंट्स को देखना था। दीवा अपने काम के लिए जा रही थी। इस बीच एक औरत तेज कदमों से चलते हुए कॉरिडोर से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक डिज़ाइनर वन पीस ड्रेस पहना था जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। साफ था वो एक काफ़ी अमीर महिला थी। दीवा इस वक्त आर्यांश के मामा सौरभ बजाज के लिए आईसीयू की तरफ जा रही थी। उसने कमरे के अंदर किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से अंदर जाने लगी। वहीं वो औरत कमरे में सौरभ के पास बैठी और उसे देखते ही रोने लगी। उसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर दीवा घबरा गई थी। वो जल्दी से अंदर आई और उसने पूछा, यहाँ क्या चल रहा है और प्लीज़ आप पेशेंट के सामने इस तरह रोइए मत। सौरभ की हालत अब ठीक थी। दीवा ने उसे क्रिटिकल आईसीयू से नॉर्मल आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया था। उसने दीवा से कहा, अरे डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं, ये मेरी बहन समीक्षा कपूर है और मुझे इस हालत में देखकर इसका रोना जाहिर है। इसे मेरी सर्जरी का पता नहीं था और ये अभी अमेरिका से वापस आई है। सौरभ के इंट्रोडक्शन देते ही समीक्षा ने पलटकर दीवा की तरफ देखा। वो आर्यांश की मॉम थी। दिखने में काफ़ी खूबसूरत और फिट नज़र आ रही थीं। उनके चेहरे पर बिल्कुल परफेक्ट मेकअप किया हुआ था जो उन्हें और भी जवान दिखने में मदद कर रहा था। समीक्षा ने अपने आंसू साफ किए और दीवा से कहा, तो आप डॉक्टर गोयनका हैं, आपने मेरे भाई की सर्जरी की है, थैंक यू सो मच डॉक्टर जो आपने मेरे भाई की जान बचाई। दीवा ने एक नज़र समीक्षा की तरफ देखा, वो काफ़ी पोलाइट और नम्र नज़र आ रही थीं, जबकि आर्यांश बिल्कुल अलग था। शायद वो अपनी माँ की तरफ बिल्कुल नहीं था, या उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आर्यांश बदल गया था। इस वक्त दीवा के दिमाग में आर्यांश और समीक्षा को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही थीं। दीवा उसे देखकर हल्की मुस्कुराई और कहा, ये तो हमारा फ़र्ज़ है और काम भी। एक्चुअली मैंने इतना ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो मैं थोड़ा घबरा गई थी, मुझे लगा कहीं कुछ हो तो नहीं गया। आप लोग बात कीजिए, मैं चलती हूँ। समीक्षा ने उसकी बात पर मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो वहीं दीवा अब बाहर आ चुकी थी। काम खत्म करने के बाद तैयार होकर वो आर्यांश की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंची। आखिरी मोमेंट पर उसने लोकेशन को चेंज कर दिया था। दीवा उस जगह पर पहुंची तो वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। वो उस जगह पहले नहीं आई थी। उस जगह को देखने के बाद दीवा को समझ आ गया था कि आखिर आर्यांश ने लोकेशन चेंज क्यों की होगी। वो रेस्टोरेंट आर्टिफिशियल वाटर बॉडी के अंदर बना हुआ था, जिसमें नाव के अंदर बैठकर रेस्टोरेंट के अंदर जा सकते थे। रात के समय सितारों से भरा आसमान पानी में चमक रहा था। वो दृश्य वाकई काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। दीवा खोई हुई आंखों से उस जगह की खूबसूरती को देख रही थी। तभी एक वेटर उसके पास आकर बोला, गुड इवनिंग डॉक्टर गोयनका। उसकी आवाज़ सुनकर दीवा का ध्यान टूटा। वेटर ने आगे कहा, आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। दीवा को एक पल के लिए हैरानी हुई, वेटर उसका नाम कैसे जानता था। लेकिन अंदर जाते ही उसकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो चुकी थी। पूरा रेस्टोरेंट आर्यांश ने उसके लिए बुक कर लिया था। वो वाकई काफ़ी अमीर है, ऊपर से शो ऑफ करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है उसे, दीवा ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। दीवा थोड़ा और आगे गई तो वहाँ सामने आर्यांश खड़ा था। उसने अपना ब्लेज़र उतारकर साइड में रख दिया था। इस वक्त वो एक फॉर्मल शर्ट में भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था और उसके चेहरे पर जेन्युइन सी छोटी स्माइल थी। दीवा को उसके साथ टाइम स्पेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपने कदम आर्यांश की तरफ बढ़ाने लगी। तो तुम आ ही गई, आर्यांश बोला और उसने दीवा के लिए चेयर खींची। दीवा चुपचाप चेयर पर बैठ गई। आर्यांश उसके सामने आकर बैठा और बोला, अच्छा बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, ऑर्डर करो। बोलते हुए आर्यांश ने मेन्यू दीवा के सामने रख दिया था। दीवा फिर आर्यांश को चिढ़ाने की नीयत से वहां पर आई थी। उसने मन ही मन कहा, ड्रिंक का ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं करने वाली, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुम मेरा फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हो। आज के बाद तुम कभी मुझे डिनर या किसी डेट पर नहीं बुलाओगे। दीवा ने जानबूझकर सबसे महंगी डिश ऑर्डर की थी। उसने ऑर्डर करने के बाद आर्यांश की तरफ मेन्यू कर दिया तो आर्यांश ने बिना मेन्यू की तरफ देखे हुए कहा, मेरे लिए वही जो इन्होंने मंगवाया है। वेटर वहां से ऑर्डर लेने के बाद चला गया। उसके जाते ही दीवा ने आर्यांश की तरफ देखा और हैरानी जताते हुए कहा, तुमने देखा तक नहीं मैंने क्या ऑर्डर किया है, फिर भी तुमने वही डिश क्यों ऑर्डर की। अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम जो खाओगी वही मैं खाने वाला हूँ, आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। वो हर एक शब्द काफी ध्यान से बोल रहा था। उसने जानबूझकर दीवा को मेरी वाइफ कहकर बुलाया। दीवा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और जवाब में बोली, मिस्टर कपूर आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं आपकी वाइफ कब से हो गई, मैंने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं की है, ऐसे ही आप मुझे अपनी वाइफ नहीं बता सकते हैं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि बिना किसी रिश्ते के ही हम दोनों ने कल की रात एक साथ बिताई? आर्यांश ने भौहें उठाकर बोला। जैसा कि हर बार होता था, दीवा उससे शब्दों में जीत नहीं पाती थी। उसे मन ही मन पछतावा हो रहा था कि वो आखिर आर्यांश को चिढ़ाने के लिए कुछ बोलती ही क्यों है, जबकि सब कुछ उल्टा ही उस पर ही आना था। उसके बाद दीवा बिल्कुल चुप हो गई। कुछ ही देर में उन दोनों का खाना आ गया था। दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। दीवा को ये खामोशी काफी अजीब लग रही थी। दीवा ने गहरी सांस ली और इस खामोशी को तोड़ते हुए आर्यांश से पूछा, मिस्टर कपूर, आज आपकी मॉम हॉस्पिटल आई थी। अपनी मॉम का जिक्र होते ही आर्यांश के हाथ खाते हुए रुक गए थे। उसने दीवा की तरफ देखा और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकती है? आर्यांश ने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसकी माँ उसके भाई सौरभ के काफी करीब थी। बहुत मुश्किल से आर्यांश ने सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग की थी और उसके लिए उसने समीक्षा को थोड़े टाइम के लिए यूएस भेज दिया था। समीक्षा को अपने भाई सौरभ से इतना प्यार था कि उसके आगे वो अपने पति और आर्यांश तक की नहीं सुनती थी। यही वजह थी कि आर्यांश को सौरभ से और भी नफरत होने लगी थी। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, आर्यांश ने बेरुखी से जवाब दिया और वापस खाने लगा। ओह, तो तुम्हें कुछ पता नहीं है, दीवा बोली। वो बातों ही बातों में आर्यांश और सौरभ बजाज की दुश्मनी का कारण जानना चाहती थी। दीवा की लादों को समझते हुए आर्यांश ने उसकी तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, चुपचाप खाना खाओ। अगर मेरे बारे में सब कुछ जानने का इतना ही शौक है तो पहले मुझसे शादी कर लो, फिर सब बता दूंगा। दीवा ने आगे कुछ नहीं पूछा। बहुत मुश्किल से उसने आर्यांश से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्यांश ने उसे झिड़क दिया था। खाना हो जाने के बाद वो दोनों वापस नाव में थे और घर जाने की तैयारी कर रहे थे। आसमान में चांद पूरा था और उसकी चमक उस जगह को और भी खूबसूरत बना रही थी। अचानक दीवा की नजरें आर्यांश के चेहरे पर गईं। उसका चेहरा काफी खूबसूरत था, हर एक फीचर मानो तराश कर बनाया गया हो। दीवा ने महसूस किया उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। दीवा के मन में आर्यांश को लेकर ख्याल चलने लगे। आखिर वो उसे लेकर इतनी जिद क्यों करता था? उसके पास तो और भी अच्छे ऑप्शंस थे, फिर भी वो बार बार दीवा के करीब आना चाहता था।
पिछली बार जैसे आर्यांश ने दीवा को झिड़का था, उसके बाद उसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। नाव से उतरने के बाद वो गाड़ी में थे। पूरे रास्ते उनके बीच कम अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक आर्यांश का बिहेवियर बदल गया था और वो बिल्कुल शांत हो गया था। दीवा का घर आ जाने के बाद वो गाड़ी से उतरी। उसने आर्यांश की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए कहा, डिनर के लिए थैंक्स, उसकी जरूरत नहीं है, आर्यांश ने जवाब दिया और गाड़ी को फिर से बंद कर लिया था। आज वो दीवा को जाते हुए भी नहीं देख रहा था, जबकि दीवा ने पलटकर उसकी गाड़ी की तरफ देखा। दीवा ने मन ही मन कहा, मैंने सोचा था कि बातों ही बातों में उससे पापा के बारे में बात कर लूंगी, ताकि वो उन्हें डिटेंशन सेंटर से बाहर निकाल दे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कह पाई। क्या जानबूझकर ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है? तुम क्यों खेल रहे हो मेरे साथ आर्यांश कपूर? तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने दे दिया, अब मेरी विश भी तुम्हें पूरी करनी होगी। दीवा की आंखों में लाचारी के आंसू थे। उसने अपने पापा के लिए खुद तक को दाव पर लगा दिया था, लेकिन आर्यांश इस मामले में उसके लिए कुछ नहीं कर रहा था। वो ये सब जानबूझकर कर रहा था या फिर सच में आज उसका मूड ऑफ हो गया था? ये बातें दीवा को उलझन में डाल रही थीं।